ओम शांति। वतन में बैठ बाबा, जब मधुबन की इस पवित्र धरा पर चमकते सितारों के समूह को देखते होंगे तो फख्र से कहते होंगे, वाह बच्चे वाह। और ये मणियां कहती होंगी, वाह बाबा वाह। ये सभी चमकदार मणियां बाबा की पावरफुल दृष्टि बनकर यज्ञ का नाम रोशन करती हैं। ऐसे सुयोग्य बच्चे समय अनुसार सेवा में, चाहे रामायण हो या श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या हो, सदैव अपनी ज्ञान वीणा से सुमधुर झंकार की शीतलता प्रदान करती हैं। ऐसी ही ज्ञान वीणा धारिणी ज्ञान सूर्य की लालिमा लिए प्रातः काल की मधुर रश्मि समान आदरणीय उषा दीदी जी का हम सभी सहृदय स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके जीवन की भोर जाम्बिया में हुई, परंतु आपको तो बाबा की अनमोल रतन के रूप में संवरना था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आपने भगवान को पहचाना और 1976 में आपका पूरा परिवार भारत पधारा। 1980 में 20 वर्ष की आयु में आपने स्वयं को इस यज्ञ में समर्पित कर दिया। तब से अब तक बाबा के हर महावाक्य को जीवन में 100% धारण कर उदाहरण मूर्त बनकर दिखाया है। चाहे भारत या फिर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में SML कोर्स कराकर दिशा बदल दी हो, आपने देश विदेश में बाबा का नाम बाला किया। इसी श्रृंखला में आपको थाईलैंड सरकार ने सन 2019 में मोरल अवार्ड एवं पीस मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्तमान में आप पॉलिटिकल विंग की मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम आपके मुखारविंद से सुनेंगे व्यर्थ से मुक्त। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस सीजन के अनमोल मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने और इस साल बाबा ने जैसे समय का इशारा, समय की समीपता बताते हुए हम बच्चों को यही प्रेरणा दी कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। प्रैक्टिकल भी देखा गया है कि इस संसार के अंदर इस समय बहुतों का व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलता है। बाबा के महावाक्य जब साकार के भी सुनते हैं तो उसमें बाबा ने कई बार यही कहा कि जब से बाबा के बने हमने इसी ऊर्जा को जो व्यर्थ की ओर जा रही थी उसी को थोड़ा सा कंट्रोल किया। जिस हिसाब से दुनिया वालों का चलता है उस हिसाब से नहीं चलता है। ब्राह्मण आत्माएं साधारणता में भी आ गई, लेकिन जैसे ही ये संकल्प शक्ति को हमने एक दिशा दिया, समर्थ की ओर उसको लगाना चाहा, बाबा को याद करते रहे, तो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे तुम कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए। मैंने इस एक खजाने को ही थोड़ा सा ट्रांसफर करने पर भी हम कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाते हैं, तो सोचो जब संपूर्ण ट्रांसफर कर लेंगे तो कैसे बन जाएंगे। इसलिए कहा कि वर्तमान समय की पुकार यही है कि अब हम अपने समर्थ स्वरूप को इमर्ज करें, समर्थ संकल्प चलाएं। कई बार बच्चे चार्ट रखते हैं और उसमें अपने आप को जब देखते हैं, आज कोई व्यर्थ नहीं चला, कोई ऐसा पाप कर्म भी नहीं हुआ, उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर व्यर्थ नहीं चला, नेगेटिव नहीं चला, तो साधारण तो चला, उससे भी तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब ये हम चेक करने लगते कि मेरा समर्थ कितना चला, शक्तिशाली कितना चला, तब बैटरी चार्ज होने लगती है या अंदर अपने आप में भरपूरता का अनुभव करते हैं। तो आज के युग की सबसे बड़ी चैलेंज अगर ब्राह्मणों के लिए है, सबसे बड़ी चुनौती, तो वह है व्यर्थ से मुक्त होने की। क्योंकि जब से दुनिया के अंदर ये सोशल मीडिया विकसित होने लगा, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, अनेक और भी चीजें जैसे जैसे निकलती गई, तो कई बच्चे उसी को देखते रहते हैं और उसको देखते देखते कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो व्यर्थ को बढ़ावा देने के साधन बहुत है। कुछ समय पहले एक बूढ़ी माताजी मिली थी, 85 साल की, मुझे कहने लगी कि मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। मैंने कहा अच्छा हुआ ना माताजी नहीं चलता है, तो बाबा के घर में आए हैं तो बाबा जो खजाना दे रहा है उसको लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो मुझे कहने लगी कि नहीं बेटा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आती है। मैंने कहा क्या आता है? बहुत अच्छे अच्छे सुवाक्य भी आते हैं, ज्ञान की बातें भी आती है। तो वो सब बंद हो गया है। तो मैंने कहा आपकी मेमोरी भर गई होगी। तो कहा अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा और महंगा फोन लेना पड़ेगा, इससे भी महंगा फोन लेना पड़ेगा। बोले क्यों? मैंने कहा तभी तो ज्यादा मेमोरी मिलेगी ना उसमें, तभी तो ज्यादा आप उसको मिटाना नहीं चाहती हो, रखना चाहती हो, तो फिर कैसे रखेंगे? तो महंगा फोन होगा तभी तो नहीं मिटाया सकेंगे, नहीं मिटेगा और रहेगा आपके पास। बोले फिर वो कितने का आता है? तो मैंने कहा वो तो बड़ा महंगा होगा, वो तो पता करना पड़ेगा आपको कितनी मेमोरी वाला चाहिए। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि बाद में वो माताजी मेरी कहने लगी कि ऐसा है, ये बात तो सही है कि वो जरा सा आवाज करता है ना, टिंग बोलता है ना, योग टूट जाता है। पता नहीं किसका मैसेज आया, देखूं तो योग में बैठी होती हूँ ना, वो टिंग आता है तो भी मेरे को ध्यान उसमें चला जाता है और मैं खोल करके देखने लगती हूँ। अभी जब कुछ दिनों से नहीं चल रहा है तो योग लग रहा है, तो बहुत समय खा जाता है। और व्यर्थ को चलाने के लिए बहुत साधन आजकल बन गए हैं। बाबा कहते हैं कि ये साइंस के साधन आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो गए। हाँ, मुरली के लिए कि जब कोई अच्छी क्लासेस आती है उसके लिए, परंतु फिर आदत लग जाती है जो और चीजों में चला जाता है टाइम, तो कितना टाइम चला जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये साधनों के को भी जब यूज करो तो मालिक बन के यूज करो, उसके गुलाम नहीं बन जाओ। ये साधन हमारे लिए ही है, हमारी उन्नति के लिए है, परंतु जब मालिक बन करके उसका प्रयोग किया तो, अगर उसके गुलाम बने तो ये बहुत समय हमारा खा जाएगा और व्यर्थ में, व्यर्थ से मुक्त होना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात के जो व्यर्थ संकल्प चलता है उसका कारण क्या? मैं कुछ बातों के ऊपर सोच रही थी आज, तो महसूस हुआ कि एक तो व्यर्थ संकल्प उसको ज्यादा चलते हैं जिसका आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है, जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हुआ, जहां ये महसूस हुआ कि अच्छा दूसरे हमसे आगे हैं, ये है, तो आत्मविश्वास क्षीण होना ये व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करने के निमित्त बनता। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे बड़ा स्वमान दिया है आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने का। दुनिया की आत्माओं के पास कोई स्वमान नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास जैसे क्षीण होता है तो धीरे धीरे हीनता की भावना उनके अंदर आने लगती है और वह यही सोचने लगते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे में कुछ नहीं है, और इस तरह के हीनता के संकल्प उनके मन के अंदर आने लगते हैं, तो जरूर है व्यर्थ ज्यादा क्रिएट होंगे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा, जब भी आपका आत्मविश्वास क्षीण हो तो कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान अपने लिए ले लो और सारा दिन उस स्वमान में स्थित होने का अभ्यास करो। जितना उस स्वमान में स्थित होंगे, रहेंगे, नशा चढ़ता जाएगा। जैसे बाबा साकार में कहते थे कि मैं कृष्ण का चित्र देखता था तो भी मुझे नशा चढ़ जाता था कि मैं ये बनने वाला हूं। शुरू शुरू में बाबा ने यज्ञ के अंदर दादियों को भी स्वमान से ही तो श्रेष्ठ नशे में स्थित होने का अभ्यास कराया। उस समय ज्यादा तो माताएं बहने थी यज्ञ के अंदर, भाई कम थे, और यज्ञ के अंदर कारोबार जो है वो काफी हार्ड वर्क जैसा होता है। 300-350 थे यज्ञ के अंदर उस समय, भाई तो थोड़े ही थे, 8-10 भाई थे, बाकी तो सब माताएं बहने थी और सारा हार्ड वर्क करना था। तो उस समय बाबा ने उन लोगों को स्वमान यही दिया, मैं चतुर्भुज हूं, चतुर्भुज हूं, ये कहते हुए उनके अंदर दोनों शक्तियां इमर्ज होने लगी। बहनों वाली शक्ति तो थी, लेकिन चतुर्भुज हूं तो चार भुजाधारी, तो दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की, तो चतुर्भुज की शक्ति उनके अंदर इमर्ज हो गई। दादियां कभी कभी अपना अनुभव सुनाते थे, जब खास करके मनोहर दादी जी के पास जब बैठते थे तो मनोहर दादी जी यही बात सुनाती थी कि बाबा जब हमें ये स्वमान देता था और उसमें अभ्यास करने के लिए कहता था तो हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती थी और हम असंभव को संभव करने की ताकत रखते थे। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जहां लोगों का आत्मविश्वास क्षीण होते हीनता की भावना में आ जाते हैं, वहां बाबा ने हमारा आत्मविश्वास जगाने के लिए श्रेष्ठ स्वमान में हमें स्थित किया, उसका अभ्यास कराया और असंभव को संभव करने की ताकत रख देते थे। तो व्यर्थ से मुक्त होने का पहला तरीका है स्वमान में स्थित हो जाओ। दूसरी बात कि जब व्यर्थ संकल्प चलता है तो उसका दूसरा मुख्य कारण यह होता है कंपैरिजन। एक दूसरे के साथ अपनी भेंट करना। देखो ये तो कितना आगे है, ये तो कितने अच्छे हैं, और हमारे अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम पीछे रह जाते। तो कंपैरिजन करना आरंभ करते हैं। हमें दूसरों के गुण भी दिखाई देते हैं लेकिन अपने अवगुण दिखाई देने लगते हैं, और सोचते हैं कि भई हम कब आगे बढ़ पाएंगे, कब पुरुषार्थ करेंगे, कब इनके जैसे भी बनेंगे, कब ये शक्ति हमारे अंदर आएंगी। जब दूसरों के साथ भी हम अपनी कंपैरिजन आरंभ करते हैं तभी भी बहुत व्यर्थ चलता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को उसके लिए जो विधि बताई है वो विधि यही बताई है कि बच्चे, इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है। उसके अंदर वो विशेषता है तो स्वयं में कौन सी विशेषता है उसको पहचानो। जब हम स्वयं की विशेषता को देखते हुए उसको पहचान करके उसको विकसित करेंगे तो हमारा पार्ट भी यूनिक होगा। इस ड्रामा के अंदर कोई भी दो आत्मा का पार्ट एक जैसा नहीं है, हर आत्मा यूनिक है। ठीक इसी तरह ये ब्राह्मण परिवार के अंदर भी हर आत्मा यूनिक है, क्योंकि हर एक से बाबा को अपने तरीके से सेवा का कार्य कराना है, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कराना है, तो उस हिसाब से उसके अंदर वो विशेषता है। तो अपनी विशेषता को पहचानो। जब आप दूसरे की विशेषता को देखते हुए स्वयं को कंपेयर करते हुए हीनता की भावना में आएंगे कि मैं कब बनूंगा, तो नाउम्मीद हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, और दिल शिकस्त होने से फिर व्यर्थ बहुत चलेगा। तो ये सोचो कि इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। कितनी सुंदर विधि बाबा ने हमें दी हुई है कि कभी कोई दो व्यक्ति का पार्ट भी एक जैसा नहीं हो सकता है, तो हम उसके जैसे कैसे बन सकते हैं, बताओ, बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। उसका वो रोल है तो मेरा रोल क्या है उसको पहचानो। उस विशेषता के आधार पर मुझे क्या पार्ट बजाना है उसको देखो, आप उसको सोचो। जितना उस विशेषता को आप विकसित करना आरंभ करेंगे अपने आप बाबा भी आपसे यूनिक सेवा कराएंगे। लेकिन आप दूसरों को देख देख कर टाइम वेस्ट करते रहेंगे सोच सोच करके मैं उसके जैसे बन जाऊं उसके जैसे, बाबा कहे आप दूसरे जैसे क्यों बनना चाहते हो, अब बाप समान बनने का प्रयत्न करो अगर बनना ही है तो। और बाबा ने जो आपके अंदर विशेषता भरी है उस विशेषता के आधार पर आप बहुत यूनिक सेवा के निमित्त बन सकते हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है ना, तो इसीलिए समर्थ संकल्प करते हुए अपने पार्ट को भी श्रेष्ठ बनाओ, यूनिक बनाओ, ये बाबा चाहते हैं। तो व्यर्थ से मुक्त होने की दूसरी विधि है ड्रामा के ज्ञान को बहुत पक्का अंदर रखो कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। हर आत्मा की विशेषता अपनी है, हर आत्मा का पार्ट अपना है, तो मेरा पार्ट भी यूनिक है, और उस यूनिक रीति से पार्ट बजाना चालू करो। तीसरा व्यर्थ चलने का कारण है कि जब आप ड्रामा की कोई सीन देखते हो और वो सीन आपको पसंद नहीं आई, तो वो सीन जब पसंद नहीं आती है तो कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तो ड्रामा की सीन जब देखते हैं
तो उस सीन को देखते हुए आप अपनी दृष्टि से देखते हैं कि ये शायद योग्य नहीं है, लेकिन बाबा ने तो हम बच्चों को कहा है कि बच्चे ड्रामा इतना एक्यूरेट है, इतना परफेक्ट है कि इसमें कोई खामी हो ही नहीं सकती है, इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है, जिसके लिए हम ये संकल्प चलाए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहे आप अपने मन के संकल्पों को उस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तब आपको ऐसा लगता है, लेकिन बेहद की स्टेज पर स्थित होकर के या त्रिकालदर्शी पने की स्टेज पर स्थित होकर के अगर ड्रामा की वो सीन देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके जैसा परफेक्ट कुछ है ही नहीं। हर बात एक्यूरेट है, इतना ये सीन भी एक्यूरेट है कि ये सीन में भी जरूर कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। तो जब कल्याण को देखने का नजरिया बन जाता है तो आपको हर चीज बहुत अच्छी लगने लगेगी। इसीलिए तो गीता के सार में कहा जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। तुम क्यों चिंता करते हो, निश्चिंत हो जाओ। तो ड्रामा में निश्चय बुद्धि आत्मा निश्चिंत तब रह सकती है जब बाहर का दृश्य कितना भी अकल्याण का क्यों न हो, लेकिन उस अकल्याण के दृश्य को न देखकर उसमें कल्याण को ढूंढना, और कोई कल्याण हो या न हो एक कल्याण तो जरूर होता ही है। कौन सा? कि हर सीन हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, अनुभवी बनाने आती है, कोई न कोई तोहफा लेकर के आती है, सीख रूपी तोहफा लेकर के आती है और देकर जाती है, तो अच्छा ही हुआ। अगर आप अनुभवी बने कोई दृश्य के आते तो अच्छा है या बुरा है? अच्छी बात है। तो व्यर्थ क्यों चलाते हैं जब आप ड्रामा की सीन को देखते हुए बाहर का अकल्याण का स्वरूप देखते हैं तब व्यर्थ चलता है, लेकिन उस अकल्याण के दृश्य में भी कल्याण को देखो, ये नजरिया विकसित करो। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि बच्चे हीरा कहाँ मिलता है, हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में। जो व्यक्ति हीरा ढूंढने जाता है कोयले की खान में, अगर चारों तरफ काला 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 काला, ये तो काला ही काला दिख रहा है, काला ही काला दिख रहा है, तो उसको तो हीरा कभी मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन चारों तरफ काला ही काला होने के बावजूद भी कहां से चमक आ रही है, वो लाइट जो उसने पहनी होती है वो कहां ऐसे टकराती है और कहां से चमक आती है, वो फ्लैश कहां से आ रही है, उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है। और जैसे ही वो चमक दिखी कि तुरंत वो आशावादी, देखो एक हीरा मिल गया मुझे, यहां मिला। ठीक इसी तरह बाबा कहे चारों तरफ अगर ड्रामा की सीन में अकल्याण के दृश्य नजर आ रहे हो, काला ही काला नजर आ रहा है, लेकिन उसमें भी वो कल्याण की चमक कहां है, उसको अगर आप खोज करेंगे तो व्यर्थ चलेगा या समर्थ चलेगा? समर्थ चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने इसी सीजन की एक मुरली में कहा कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है, व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। ये बताता है जैसे ही व्यर्थ चलता है मना, आपके पास मुरली के मनन चिंतन का खजाना कम है। मुरली भले रोज सुनते हैं लेकिन मुरली है समर्थ संकल्पों का खजाना। एक है मुरली सुनना, दूसरा है मुरली को स्वरूप में लाना। तो इसका मतलब सुन लिया, स्वरूप नहीं बने। जब स्वरूप नहीं बनते हैं तो उस खजाने को अपना नहीं बना सकते। लेकिन जितना मुरली को सुनते हुए, उसका मनन करते हुए उस खजाने को हम अपना बनाते हैं, तो अपना बनाने से वो समर्थ का खजाना जब हमारे पास होता है तो मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलने का कोई मार्जिन ही नहीं। तो मार्जिन क्यों है? क्योंकि हम मनन चिंतन नहीं कर रहे, इसलिए मार्जिन है। जिस तरह बाबा कहे कि कोई बिजनेसमैन होता है, बहुत बिजी रहता है, तो उसके पास फालतू सोचने का टाइम नहीं होता है। ठीक इसी तरह बिजनेसमैन बन जाओ, ज्ञान रत्नों से ऐसा खेलो। आज जैसे बाबा की मुरली सुनी, तो बाबा की मुरली में कौन सी बातें बाबा ने हम बच्चों को दी, उसका मनन चिंतन करो। बिजी हो जाओ, बिजनेसमैन बन करके वो दान करना शुरू करो, किसी न किसी को सुनाओ कि आज बाबा ने क्या सुनाया। मान लो कि क्लास में कोई भाई बहन आज कोई कारणवश नहीं आ सके, आप उनको सुनाओ मुरली की पॉइंट, तो आपका भी रिवाइज हो जाता है, रिपीट हो जाता है, और उसको भी दे देते हैं, दान कर देते हैं। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा, महासहयोगी बन जाओ, महादाता बन जाओ। तो महादाता बन करके, महासहयोगी बन करके, पता नहीं किसको कौन सी बात आज की मुरली की लग जाए। तो बिजी रहो, जितना ज्ञान रत्नों के खजानों के साथ आप बिजी रहेंगे तो माया व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए आ नहीं सकती। लेकिन अगर मन बुद्धि को फ्री छोड़ा है, तो मन बुद्धि को फ्री छोड़ने से तो व्यर्थ रूपी माया स्वतः अटैक करने लगेगी। अटैक तो क्या, तूफान खड़ा कर देंगे। और जैसे तूफान खड़ा करती है, मन बुद्धि की शक्ति उसमें व्यर्थ जाने लगती है, लीकेज होना शुरू हो जाता है। अब आपने अपनी अवस्था बनाई, बहुत मेहनत करके अमृत वेले उठे, मुरली क्लास किया, श्रीमत के हिसाब से हर कदम सुबह से लेकर चलते आए 10-11 बजे तक, इतना अच्छा दिन की शुरुआत हुई, इतनी अच्छी अवस्था आपने बनाई यहाँ तक। लेकिन 11 बजे के बाद कोई ऐसा घटना घटी, ऐसी बात सुनी, ऐसा हुआ, ऐसा संग मिल गया जिसने व्यर्थ सुना दिया आपको, और वो व्यर्थ सुना करके आपके मन को हलचल में ला दिया, तो सारा जो आपने जमा किया हुआ है यहाँ तक, सारा लीकेज होना शुरू हो जाता है। और लीकेज होते होते वो अवस्था कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है। फिर कहते पता नहीं, बहुत अच्छा दिन तो आरंभ हुआ था, लेकिन शाम तक देखते हैं तो अपनी खुशी कहाँ गायब हो जाती है। व्यर्थ चलाते हैं, व्यर्थ ही तो सबसे बड़ा लीकेज है। और अंतिम पेपर जो आएगा एक सेकंड का होगा, और उसी सेकंड में अगर व्यर्थ संकल्प चल गए, तो कोई दृश्य ऐसा देखा और व्यर्थ संकल्प आरंभ हो गए, तो क्या होगा? पास होंगे, फेल होंगे, क्या होंगे? फेल हो जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बिजी रहो, बिजनेसमैन बनो, और ज्ञान रत्नों को बांटना शुरू करो, शेयर करो। क्या मालूम आपके मुख से वो निकली हुई बात, और जितना उसको शेयर करेंगे, मनन चिंतन करके स्वरूप में लाएंगे, तो हमारी बुद्धि भी समर्थ हो जाएंगे। और बुद्धि समर्थ होने से फिर मन का चलता नहीं, क्योंकि बुद्धि लगाम है ना। तो लगाम ठीक है, बुद्धि की समर्थी है, तो मन फिर मनमानी नहीं कर सकता है, वो व्यर्थ नहीं चला सकता। चला पड़ता है, बुद्धि लगाम उसके खींच लेगी, मन को शांत कर देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। जैसे कोई व्यक्ति बिजी होता है ना, तो उसके पास कोई जाता नहीं है, बिजी है। मुझे याद आता है कि जब हम विदेश में थे, छोटे छोटे थे, तो भारतीय जब जाते थे तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो उस बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक था, उसने वो भारतवासी था, तो उसने सोचा कि भारतवासी होंगे तो कम से कम कम्युनिकेट करने में और विश्वास पात्र तो है हमारे भारतवासी, तो ये सोच करके उसने बहुत लोगों को यहाँ से वहां बुलाया था अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने के हिसाब से, कि भाई अपने भारतवासी होंगे तो अच्छा रहेगा, उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको जीवन भी बनेगा यहाँ के लोकल लोग को रखने के बजाय। तो इंग्लिश नहीं आती थी और सब अंग्रेज आते थे खरीदारी करने, तो एक भाई नया नया आया था, तो उसने जाकर के, उसका एक दोस्त था, उसको इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, तो उसने कहा कि भाई मालिक ने मेरे को ऐसी जगह रखा है कि वो आएंगे वो पता नहीं क्या बड़ 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 करते हैं, तो मुझे समझ में कुछ आता नहीं है, तो क्या करूं मैं। तो उसका जो साथी था उसने कहा कोई बात नहीं, देखिए तेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, तो जब कोई आएगा तो तुम नीचे ऐसे ढूंढना चालू करना और खाली इतना बोलना आई एम बिजी, बस इतना सीख ले एक लाइन। तो उसने ये सीख लिया, ठीक है। तो जैसे ही कोई अंग्रेज आते थे ना, तो नीचे ढूंढने शुरू करता था और बोलता था आई एम बिजी। तो वो कहा वहां से मेरे पास आ जाएंगे, जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तो कहा ठीक है, ये तो युक्ति ठीक है, कहा लेकिन अगर तेरे पास नहीं आए, वहां खड़े रहे तो क्या बोलने का। तो कहा फिर खड़े हो जाओ और कहो यस, कहेंगे ना तो वो जो बोलना होगा ना बोल देंगे। अब उसको वाइब्रेशन से फील करना, अगर सही है तो कहना यस 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 करते जाना बस, और अगर तुमको लगे कुछ गलत है तो कहना नो नो। तो तीन शब्द सिखाया, यस नो और आई एम बिजी। फिर उसके बाद वो चला ही जाएगा, या तो वो समझ जाएगा इसको समझ में नहीं आता है, दूसरे के पास चला जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, नुकसान हो गया ये यस नो आई एम बिजी में भी, है ना। तो उसने, दो अंग्रेज आए, वो कुछ बोलने लगे, तो पहले तो वो आई एम बिजी करता रहा नीचे देखते हुए। जब वो खड़े ही रहे जावे ही नहीं, तो फिर खड़ा हुआ, यस 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 किया, तो वो लोग कुछ बोल गए। तो इसने यस 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 करता रहा, तो उन्होंने कुछ निकाला, कागज फाड़ करके देना चालू किया। उसको लगा ये तो गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या होगा, किस चीज का कागज होगा। कहा नो 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 नो, तो वो गड़बड़ हो गई, अब वो तो फाड़ करके चले गए बाहर। अब वो दोनों लेकर के आए, कागज देके गए, यस यस करने में तुम गड़बड़ हो गई, बोले मैं तो कहा भी आई एम बिजी, तो भी गए नहीं। तो वो दूसरा भाई था, कहा कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ और जो है तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं उसको देख लूंगा। कहा ठीक है जाओ, मेरे से तो बला टल गई, पता नहीं जवाब देना पड़ता था मालिक को। फिर शाम को वो दिखे नहीं तो कहां गए दो तीन भाई, कहां चले गए। जब रात को आए, रहना तो साथ में था, तो रात को आए तो पूछा आप लोग कहां गए, बोले वो सुबह जो दो नहीं आए थे, बहुत बोल बोल करके तेरे को फाड़ करके देके गए थे, कहा? बोले वो कह रहे थे कि तुम हमको अपने दुकान के बाहर ये पोस्टर लगाने दो सर्कस का, तो हम दो टिकट तेरे को फ्री देंगे। तो वो दो टिकट फ्री दे के गए थे, तुमने मेरे को दे दिया, तो हम दो जने जाके सर्कस देख के आ गए। तो देखो बाबा क्या कहता है, अगर आप में समर्थ ही नहीं होंगी तो दूसरा क्या करेगा, क्या करेगा, फायदा उठाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप स्वयं में समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो, और जैसे ही शक्तिशाली अपने आप में बनेंगे, समर्थ होंगे, तो माया कभी भी आपका एडवांटेज नहीं ले सकती है, और माया से आप बच के रहेंगे। तो इसलिए अपने अंदर समर्थी को विकसित करो। बाबा ने इतना जो हम बच्चों को खजाना दिया है, ये खजाने को क्या करो, हाँ, उगार उगार करके, जैसे गैया घास उगारती है, तो उगार उगार करके क्या करो, शक्ति उसकी महसूस करो और उस शक्ति को अपने अंदर अनुभव करो, है ना। बाकी व्यर्थ जो चलता है तो उसके लिए अपने अंदर कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो नए साल के अंदर क्या प्लानिंग करें। कई बार हम देखते हैं कि बाबा के बच्चे आते हैं बाबा के घर में, और नए साल पर नए संकल्प तो अंदर लेते ही है, पुरुषार्थ के लिए नवीनता लाने के संकल्प तो अंदर लेते ही है, और जब संकल्प लेते हैं तो बाबा को पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, बाबा आज से मैं ये कमजोरी, जो कमजोरी के कारण व्यर्थ बहुत चलता है, तो ये कमजोरी यहाँ छोड़ के जाते, लिखते हैं ना ऐसा। अब कमजोरी छोड़ देने से या चिट्ठी लिख देने से निकल जाएगी, निकल जाएगी। मान लो कि यहाँ अंधेरा है, अब कोई आकर कहे अंधेरे को बाहर निकालो, निकलेगी अंधेरा, निकलेगा या अंधेरा को जला दो, जलेगा? नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, लेकिन प्रकाश का स्रोत है। इसलिए प्रकाश को जलाओ तो अंधेरा खत्म। तो समर्थ को अंदर में ले आओ, समर्थ का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, कमजोरी का स्रोत नहीं है। कमजोरी जीवन में क्यों आई? कमजोरी जीवन में इसलिए आई क्योंकि शक्ति का अभाव था, इसीलिए कमजोरी आई, है ना। अब मैंने कमजोरी लिख कर दे दिया बाबा के कमरे में, उससे वो कमजोरी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, क्रोध को जीतने की बात या क्रोध से मुक्त होने की बात कही थी। तो बाबा कहे ये क्रोध एक कमजोरी है, अब इस कमजोरी से मुक्त होना है। कैसे मुक्त होंगे? बाबा मैं क्रोध छोड़ देता हूँ, आज से यहाँ क्रोध छोड़ करके जाता हूँ, ये कह करके क्रोध छूट जाएगा? नहीं, ऐसे छूटेगा नहीं। तो इस नए साल में आपको क्या करना है, देखना है कि मेरे में कितनी कमजोरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। मान लो कि आपने एक एक कमजोरी का लिस्ट बनाओ, कितनी कमजोरी होंगी, बहुत बहुत तो 5-6 होंगी मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 8-10 होगा, कि उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, कि होगा, हाँ 10 कमजोरी से ज्यादा हो सकता है ना, इतनी ज्यादा नहीं होंगी, ब्राह्मण है ना, थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म कमजोरी रह गई है, बाकी बड़ी बड़ी कमजोरियों को तो जीत लिया है, अब छोटी छोटी कमजोरियां ही रह गई है, तो कितनी होंगी, 8-10 होगी, ठीक है। अच्छा आठ दस कमजोरी जो है वो कौन सी शक्ति के अभाव के कारण है, तो ये लिस्ट निकालो। एक एक कमजोरी कौन सी शक्ति के अभाव के कारण है। जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में कहा क्रोध है, अब क्रोध कौन सी शक्ति के अभाव के कारण है, सहन शक्ति, शांति की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, कहीं होते हैं ना धीर्य होते हैं, जल्दी करो और जल्दी नहीं होता है तो गुस्सा आता है। तो ये तीन शक्ति के अभाव के कारण क्रोध है। अब हमें प्लानिंग करना है इसी तरह एक एक कमजोरी के सामने कौन सी शक्ति का अभाव है ये देखना है। बहुत बहुत तो दो या तीन शक्तियों का अभाव के कारण वो कमजोरी है, राइट। अब जब अमृत वेले बैठो तो स्पेसिफिक पुरुषार्थ हमें ये करना है कि अमृत वेले सर्वशक्तिमान सर्वशक्तियों का स्रोत है, तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा जो स्रोत है उससे वो शक्ति को अंदर में आवाहन करो बाबा से। अमृत वेले विशेष एक सप्ताह तक लगातार जैसे सहन शक्ति का आवाहन करो या शांति की शक्ति का आवाहन करो, आप जिसको आप प्रायोरिटी समझते हो उसको आप आवाहन करो। अच्छा, आप समझते हो कि एक सप्ताह के बाद अपने आप को चेक करो, एक सप्ताह के बाद भी अगर वो कमजोरी थोड़ी बहुत रही है या थोड़ी बहुत आपने उसके ऊपर जीत पाई लेकिन आपको लगता है कि अभी भी है अंदर में, और एक सप्ताह करो कोई बात नहीं, और एक सप्ताह वो शांति के जो है शक्ति का आवाहन करते जाओ, सहनशीलता का आवाहन करते जाओ। दो सप्ताह लगातार करने से और अटेंशन रखने से क्रोध पर विजयी होगी या नहीं होगी। अच्छा, दो सप्ताह शांति की शक्ति, तीनों ही शक्ति मानो कम है, तो दो सप्ताह शांति की शक्ति का आह्वान किया, दो सप्ताह सहन शक्ति का आह्वान किया, दो सप्ताह धैर्यता की शक्ति का आह्वान किया, छह सप्ताह हो गया। अच्छा, आपने दस कमजोरियों की लिस्ट बनाई, हर एक के आगे अगर एक एक कमजोरी हो या दो दो कमजोरी हो, दो दो शक्ति का अभाव हो, तो दस कमजोरी के अगेंस्ट अगर बीस शक्तियों का अभाव आपने महसूस किया, कुछ रिपीट भी होगी उसमें, तो उस शक्तियों को आपने समझा प्रायोरिटी मेरी यही है कि इसको मुझे पहले आवाहन करना है। तो दस शक्तियां, बीस शक्तियों का आवाहन करना, दो दो सप्ताह अगर आवाहन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 40 सप्ताह, साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। अब 40 शक्ति आपके पास है जिसका आवाहन करना है, दो दो सप्ताह एक एक शक्ति का, 20 शक्तियों का अभाव है, 10 कमजोरी 20 शक्तियों का अभाव, उसको दो दो सप्ताह आपको देना है, माना 40 हो गया, तो भी साल के अंदर आप सारी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते। प्लानिंग करें हम अपने पुरुषार्थ का कि मुझे बाप समान बनना है, तो अगर खाली एक वेग पुरुषार्थ करेंगे, हाँ अमृत वेले बैठ गए, बाबा से सर्वशक्तियों का आवाहन किया हमने, लेकिन वो वेग था, इसीलिए अपनी कमजोरी को हम भर नहीं पाए और ये कमजोरी बढ़ती गई, एक से दूसरी पैदा हो गई, दूसरी से तीसरी पैदा हो गई, तो इस तरह से बढ़ती गई। तो साल के अंदर जैसे बाबा ने डेट मांगी संडे की मुरली में कि डेट फिक्स करो, कब तक बाप समान बनना है, कब तक बनना है, कितना बाबा बार बार कह रहा था, तो अपना एक प्लान बनाएंगे ये नए साल में, तो साल के अंदर बाप समान संपूर्णता को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो पुरुषार्थ सहज होगा या मेहनत वाला होगा, नहीं तो क्या होता है, तंग होते रहते हैं, अपनी कमजोरियां बार बार उभरती है और वो कमजोरियों के कारण व्यर्थ संकल्प चलता है। तो जो पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुंचे, फिर लीकेज होकर यहाँ आ गए, फिर दूसरे दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, फिर नीचे आ गए, कब तक ये मेहनत करते रहेंगे। बाबा भी कहते हैं मैं अभी मेहनत देख नहीं सकता हूँ, बच्चों की मेहनत वाला पुरुषार्थ देख नहीं सकता है। तो इसीलिए अपना प्लानिंग करना है कि एक एक कमजोरी के ऊपर कैसे विजयी आत्मा मुझे बनना है। रोज अपने मस्तक पर बाबा से विजय का तिलक, सफलता का वरदान ले लो, और जैसे ही आप उसके ऊपर विजयी होंगे इतना हल्कापन लगेगा और आपका पुरुषार्थ यहाँ तक जो आया है दूसरे दिन इधर से इधर तक जाएगा, तीसरे दिन इधर से इधर तक जाएगा, वो व्यर्थ का लीकेज समाप्त हुआ तो जो नीचे उतर जाते थे वो नीचे उतरना बंद हो जाएगा और इस तरह से अपनी उन्नति करते जाएंगे। जैसे जैसे उन्नति करते जाएंगे तो बाबा के साथ की आपकी प्रीत लगन बढ़ती जाएगी और उस लगन में मगन होना फिर आसान हो। तो युद्ध वाले योगी नहीं बनना है, युद्ध करने वाले योगी नहीं बनना है, मेहनत वाले योगी नहीं बनना है, लेकिन प्लानिंग से समर्थ आत्मा बन करके, शक्तिशाली बन करके मोहब्बत में समाते जाओ, खोते जाओ और देखो आप रेगुलर में फिर धीरे 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 उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे और इस साल के अंदर बाप समान बनना क्या होगा, संभव होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस तरह से अपने पुरुषार्थ की एक विधि बनाओ, है ना। मुझे ये कमजोरी को मिटाना है, कमजोरी को मिटाना है, बाबा मुझे शक्ति दो, है ना। किसको शक्ति दे रहे हैं, कई बाबा के बच्चे बहुत भोले होते, बाबा ये कमजोरी मिटाना है, क्रोध है मेरे अंदर, क्रोध को मिटाने के लिए शक्ति दो, शक्ति दो। अब शक्ति जो ले रहे हैं किसको मिल रही है, क्योंकि क्या है, कौन सा स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है, क्रोध को खत्म करना है, ये दिमाग में है, लेकिन क्रोध के अगेंस्ट शांति है। तो ये सोचो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा की शक्ति जो मुझे मिल रही है ये मेरे शांति के स्वरूप को मिल रही है, तो क्रोध के ऊपर विजय होगा। क्रोध का स्वरूप अगर सामने लाएंगे, बाबा की शक्ति मिल रही तो क्रोध बढ़ेगा या कम होगा, क्रोध और शक्तिशाली बनेगा या कम होगा, बताओ। तो अपना कौन सा स्वरूप इमर्ज रखते हैं, अगर मुझे क्रोध को जीतना है तो अपने शांति वाला स्वरूप इमर्ज रखना चाहिए, ठीक है ना। तो शांति वाला स्वरूप इमर्ज रखेंगे और बाबा की शक्ति उस शांत स्वरूप को मिल रही है तो मेरी शांति बढ़ती जाएंगी और जैसे मेरे शांति की शक्ति अंदर में बढ़ती जाएंगी, साइलेंस पावर बढ़ता जाएगा तो क्रोध कहां जाएगा, क्रोध के संस्कार मर्ज हो जाएंगे, वो कमजोरी वाले संस्कार मर्ज हो जाएंगे आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प के बाद वही मर्ज होगा, लेकिन तब तक तो मर्ज हो जाएगा। और अपने दैवी संस्कारों को क्या करो, इमर्ज करो, शांति के, प्रेम के, खुशी के, उमंग उत्साह के, ये संस्कार को इमर्ज करो आप। और बाबा की शक्ति जो देनी है वो पॉजिटिव संस्कारों को दो, नेगेटिव संस्कार को नहीं, नहीं तो वो पावर बढ़ जाएगा। इसलिए कहते पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, आजकल बहुत आने लगा है। क्यों आने लगा है, क्योंकि गलत जगह आप शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, गलत स्वरूप को आवाहन कर रहे हैं, उसको शक्ति दिला रहे हैं। तो व्यर्थ से मुक्त होने की विधि है कि अपने समर्थ स्वरूप को जागृत करो, अपने समर्थ स्वरूप को इमर्ज करो, अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज करो और उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करो। उस स्वरूप से आप अपनी कर्मेंद्रिय को यूज करो तो व्यर्थ चलने का मार्जिन नहीं होगा। कमजोरी वाला स्वरूप इमर्ज नहीं करो। जैसे ही आपके समर्थ स्वरूप विस्मृत हो जाएगा तो कमजोरी वाला स्वरूप इमर्ज होगा, तो क्या होगा, वही कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो ये विधि है इस नए साल में अपने लिए, मुझे बाप समान बनना है तो मुझे बाप समान बनना है, कैसे बनना है, ये विधि को एक अपनाओ तो जल्दी सहज ही बाप समान स्थिति हमारी होने लगेगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता करो सतयुग में तुमको।